जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनावल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, रे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, रे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे। राधा गिरिधारी राधा गिरिधारे राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बालदेव जय सुभद्रा। गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद भूपाद प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9 श्लोक संख्या 49। यत् तद् ब्रह्म परमं सूक्ष्मं अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेव इति यं गृणन्ति ಹಿ ಸಾತ್ವತ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಗೃಹಂತಿ ಸಾತ್ವತ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯತ್ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ ಯತ್ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಅಶೂನ್ಯಂ ಶೂನ್ಯಕಲ್ಪಿತಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವೇತಿ ಯಂ ಗೃಣಂತಿ ಸತ್ವತಃ अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यत जो तत् वैसा ब्रह्म परम परब्रह्म भगवान कृष्ण सूक्ष्मम आध्यात्मिक सारे भौतिक धारणाओं से परे अशून्यम निर्विशेष या शून्य नहीं शून्य कल्पितम कम बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शून्य करके कल्पित भगवान भगवान वासुदेव कृष्ण इति इस प्रकार यम जिसको गिणंती गायन करते हैं ही निस्संदेह सात्वता शुद्ध भक्तगण। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार है, वे बुद्धिहीन मनुष्य जो भगवान को निर्विशेष या शून्य ना होने पर भी उन्हें ऐसा मानते हैं, उनके लिए भगवान वासुदेव कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अतएव शुद्ध भक्ति ही भगवान को समझते तथा उनका गान करते हैं। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा, भागवत में कहा गया है, वदन्ति तत्त्वदेशत्व विज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का साक्षात्कार तीन स्तरों में किया जाता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान रूप में। भगवान ही हर वस्तु के आधार है, ब्रह्म भगवान का आंशिक स्वरूप है और वासुदेव जो सर्वत्र एवं प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में रहते हैं, भगवान का उन्नत साक्षात्कार है, वही भगवान का उन्नत साक्षात्कार है। किंतु जब कोई भगवान को समझ जाता है वासुदेव सर्वमिति, और जब कोई वह अनुभव करता है कि वासुदेव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों हैं, तो उसे पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान कहकर भगवान परमं भवान कहा है। परम ब्रह्म निर्विशेष नहीं कि तथा सर्वव्यापी परमात्मा की शरण का निर्देश करता है। जब कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुना, तो इसका अर्थ यह है कि सिद्ध भक्त पूर्ण साक्षात्कार के बाद भगवद्धाम को जाता है। महाराज कटवांग ने भगवान की शरण स्वीकार कर ली थी, फल स्वरूप उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत अंशुमन की वंशावली शीर्षक नवे अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञातवानंदस्य ज्ञानांजनशलाकं चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वापदान्तिकम्। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ್ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೆ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆಖರಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಜಿಸ್ಕೆಂದರ್ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಕಾ ನಿರೂಪಣ ಹುವಾ ಹೇ ಪರಮ ಸತ್ಯ ಕಾ ನಿರೂಪಣ ಹುವಾ ಹೇ ಪಿಛಲೆ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಕಹಾ ಗಯಾ ಹೇ ತತಸ್ವಾಂ ಭಾವಂ ಆಸ್ಥಿತಃ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಭಾವಂ ಹಿತ್ವಾ ಅಜ್ಞಾನಂ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಭಾವಂ ಅನ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೀ ಜೊ ಇಚ್ಛಾಂ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಕೆ ಹಿತ್ವಾ ಅಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಕೆ ಯಾನಿ ಶರೀರ ಜೊ ಅಜ್ಞಾನ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ವಿದ್ಯಾ ಸೆ ಬನಾ ಹುವಾ ಶರೀರ ಕೋ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ಕೆ ತತಸ್ವಾನ್ ಭಾವಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಜೊ ಸ್ವಾನ್ ಭಾವಂ ಜೊ ಸ್ವಭಾವ ಹೇ ಆಶ್ರಿತಃ ಉಸ್ಕೋ ಆಶ್ರಯ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯಾ ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಜಾನೆ ಕಟ್ವಾಂಗ ರಾಜ तो इस प्रकार अपनी अज्ञान को त्याग करके अपनी जो अन्य भाव को त्याग करके हित्वान्य भावम अन्य भाव को त्याग करके स्वभाव को प्राप्त किया. ये स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास. हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा स्वभाव है. एक ही स्वभाव है. क्या है वो? कृष्ण का सेवा करना ही हमारा स्वभाव है. इसके अलावा कोई भी जो स्वभाव है वो स्वभाव नहीं है, वो अन्य भाव है. तो इसलिए इधर कटवांग ऋषि ने क्या किया? त्यक्त्वान्य भावम स्वान भावम आस्थितः स्थितः. तो स्वान भावम क्या है? स्वान भावम ये है कि कृष्ण का सेवा करना, भगवान की सेवा करना. तो कृष्ण का सेवा करना, तो ये कौन है कृष्ण? हु इज दैट कृष्ण? जिनकी सेवा में लगे हैं तो उनका तो निरूपण करना चाहिए. कौन है? इनका वर्णन तो होना चाहिए. तो ये श्लोक में उनका वर्णन हुआ है. यानी कटवांग राजा इस शरीर को त्याग करके अपनी जो अन्य भाव को त्याग करके जो स्वभाव माने सेवा की भाव में स्थित हुआ है वो किसकी सेवा में स्थित है? तो उनका वर्णन इस श्लोक में हुआ है. जो श्लोक यद तत् से शुरू होता है, यद तद, ये शब्द के द्वारा यद तद दिदि, यद तद दिदि निरूपितम, निरूपितम का अर्थ क्या है? निरूपण किया गया है. आचार्यगण कहते हैं यद तद शुरू होने वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में निरूपण किया गया है. क्या निरूपण किया गया है? परम सत्य का निरूपण किया गया है. किसके शरण में या किसके सेवा में कटवांग राजा है? तो यद तद का एक अर्थ है. तो दूसरा बात यह है, यद तद कोई और चीज नहीं है, वो जो परम सत्य है. ये परम सत्य यद तद इति शब्देशु वेदेशु विख्यात, शब्देशु में यद तद इति वेदेशु विख्यात. यानी कटवांग ऋषि या कटवांग राजा किनके शरण में गए? उनके शरण में गए जो यद तद नामक शब्दों में वेदों में विख्यात है. जैसे आप उपनिषद खोलेंगे, खास करके ईशोपनिषद, तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वांतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्तु सर्वस्य बाह्यतः। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि अगर तद्विज्ञानार्थम, उपनिषद में कहा गया तद्विज्ञानार्थम, भगवद गीता में कहा गया है तद्विद्धि प्रणिपातेन। भगवान को तद यद और तद शब्दों के द्वारा संबोधित किया गया है उपनिषदों में। उपनिषदों में कहीं भी यद तद शब्द आता है ये समझना चाहिए ये भगवान को संबोधित किया जा रहा है। यानी कटवांग राजा किनके शरण में गए? उनके शरण में जे गए जो यद तद शब्दों के द्वारा वेदों में वर्णन किया गया है। अगर कोई कहे यद तद के द्वारा हम क्या समझेंगे भाई उनके बारे में, यद तद का अर्थ क्या है? तो उसका वर्णन करते हुए क्या कहा गया है, ब्रह्म परमम। यद तद कोई और नहीं है, ये परब्रह्म को सूचित करने वाले शब्द है। कहीं भी शास्त्र में यद तद आता है यह समझना चाहिए कि परब्रह्म को सूचित किया गया है। यद और तद, तद का अर्थ है दट, यानी वो। यद का अर्थ है वो भी वो है। अस्तित्व में यद और तद एक ही चीज है, तो कहीं यद यूज किया गया है कहीं तद यूज किया गया है परब्रह्म का वर्णन करने के लिए। तो जैसे हम भी बोलते हैं ना कि अगर कोई विख्यात व्यक्ति है उसको उसका नाम नहीं लेते, वो बार बार वो बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? वो इतना प्रसिद्ध है, अगर वो बोला मतलब वही है और कोई चीज नहीं, और कोई और व्यक्ति नहीं है। ही सो फेमस, और वो बोलने से समझना चाहिए वही, और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भगवान इतने विख्यात है, ये को बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम, ही इज वन स्पेशल पर्सन, बाकी सब कॉमन है, बाकी सब में कोई विशेषता नहीं है। तो भगवान में ही विशेषता है, इसलिए उनको यद कहा गया है, तभी उनको तद कहा गया है। इसलिए यद तद बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये किनको सूचित किया जा रहा है? ब्रह्म परमम या परब्रह्म को सूचित किया जा रहा है। तो यद तद कोई और नहीं है, परब्रह्म है। तो कटवांग राजा किनके शरण में गए, किनकी सेवा में गए? परब्रह्म की सेवा में गए। तो परब्रह्म का लक्षण क्या है? ठीक है, हम समझ गए परब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म का लक्षण क्या है? परब्रह्म का लक्षण सूक्ष्मम। ये पहला लाइन में जो शब्द क्या आता है, परब्रह्म का लक्षण क्या है? सूक्ष्मम। सूक्ष्मम का अर्थ क्या है? सूक्ष्मम का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा जिनको ग्रहण नहीं कर सकते उनको सूक्ष्म कहा गया है। और जगह कहा गया सूक्ष्म का अर्थ, आप जितना छोटा अणु को सोच सकते हो, आपकी कल्पना कर सकते हो, आपके मन में जितना कोई भी ऐसा वस्तु है अणु या परमाणु को कल्पना कर सकते हो, उससे भी छोटा, उससे भी निम्न। अणोरणीयाम महतो महीयाम आत्मस्य ज्ञातो निहितो गुहायाम, ऐसा कहा गया है शास्त्र में उपनिषद में। अणोरणीयाम, भगवान कौन है? अणु का भी अणु है, हमारे लिए अणु जो है बहुत छोटा है, और अणु के लिए अणु का है बहुत छोटा है, और मान लो उसको अणु मानेंगे उससे भी छोटा। ऐसा कल मैं सुन रहा था कि अब आजकल बहुत चर्चा चल रहा है, तो गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल, मैं पढ़ा नहीं कुछ उसके बारे में, कुछ भक्त लोग कह रहे थे। अभी कुछ तो ने पता किया कि एक ऐसा पार्टिकल है, सूक्ष्म चीज है, वो गॉड पार्टिकल है, कितना सूक्ष्म है, वो परमाणु का भी परमाणु है। तो उसके ऊपर बड़ा वाद विवाद चल रहा है कि ये भगवान, ये पार्टिकल है भगवान क्या? लेकिन अगर आप उसको पता किया कि ये भगवान है, गॉड पार्टिकल है, वो भगवान नहीं है, क्योंकि अत्यन्द्रियम हमारे इंद्रियों से परे है, हमारे इन भौतिक जड़ बुद्धि या जड़ आंखों के द्वारा वो दिखते नहीं है, और उनको नोबल प्राइज देने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है, उनका भी ये जो विचार है वो भी कंफ्यूजन है, उसमें कोई ठीक ठाक विचार नहीं। वो खुद कहता है ऐसा ये चीज हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं उसको नोबल प्राइज दिया जाए। लेकिन ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। गॉड इज नॉट ए पार्टिकल। भगवान जो है हमारी चिंतन शक्ति से परे है। इसलिए यहां का आचार्य वर्णन करते हैं, अवांग मन गोचरम वेदी वेदेशु व्याख्य। वेदों में ऐसे ऐसी वाक्य आता, अवांग मन गोचरम, अपने मन और वाणी के द्वारा मतलब नहीं गोचरम, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। यानी अपने मन और वाणी के द्वारा जिनको हम पहुंच नहीं सकते उनको क्या कहा गया है, अवांग मन गोचरम कहा गया है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। अगर कोई सूक्ष्म वस्तु को पकड़ने जाएंगे आप कैसे पकड़ सकते हैं जड़ वस्तु के द्वारा। आप कितना भी बड़ा मशीन लगाओ, ऐसा सुना कि कोई फोटो दिया था मशीन वशीन के साथ, कुछ फोटो दिया है, हमने देखा है उस गॉड पार्टिकल, वो कहाँ है, वो कहीं है, मेरी मन में कहीं है, छुपा हुआ है, वह कहीं कहीं दिखता नहीं है, लेकिन ये मशीन के द्वारा देख सकते हैं, हमने पता किया, ऐसा ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन सूक्ष्म है। भगवान जो है इतना सूक्ष्म है कि वो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं, यू कैन एंटर एनीवेयर। अगर सूक्ष्म वस्तु है, अणु के बारे में लोग बहुत चर्चा करते हैं, अणु परमाणु के बारे में चर्चा करते हैं। पहला कहा गया था, एक साइंटिस्ट था कि उन्होंने कहा इस जगत में सबसे सूक्ष्म वस्तु है अणु। बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं ये अणु जो है उसके अंदर भी और सूक्ष्म है, उसको बोला परमाणु कहा, उसके अंदर भी और भी सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो मतलब अभी भी इससे ज्यादा सूक्ष्म है। तो ये आजकल के वैज्ञानिकों को अभी खोज भगवान का ही खोज है, वो भी भगवान को खोज रहे हैं, लेकिन उनका तकलीफ क्या है, अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा खोज रहे हैं। लेकिन भगवान का खोज का दिशा जो है वो बराबर है, वो जानते हैं भगवान का परिभाषा क्या है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है और महान से महान है। तो ये दो सब्जेक्ट है, एक है एटॉमिक फिजिक्स, दूसरा है कॉस्मोलॉजी। सो सबसे महान क्या है वो जानने की प्रयास, और सबसे सूक्ष्म क्या है वो जानने की प्रयास। ये दो प्रकार का प्रयास करते करते पूरा साइंस खड़ा हो गया, लेकिन अभी तक निरूपण नहीं कर पाए कौन सूक्ष्म है, सूक्ष्माति सूक्ष्म कौन है और सबसे महान कौन है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है अणोरणियाम महतो महीयाम। इसका अर्थ क्या है, अणु का भी अण है भगवान, अणु का भी अणु है और महान का भी महान है। अंग्रेजी में वो मैथमेटिक्स में एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तो इन्फिनिटी का परिभाषा के बारे में बहुत सारे लोगों ने व्याख्या किया है। तो एक भारत के एक बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कहा इन्फिनिटी इज गॉड। तब लोगों ने पूछा, हमने ये नहीं पूछ रहे भगवान है, पूछ रहे साबित करो ये भगवान है। तब उन्होंने उपनिषदों का श्लोक कोट किया, उन्होंने कहा कि इन्फिनिटी का अर्थ क्या है, वो संख्या जो आप कोई भी संख्या बोलो उससे बड़ा है। आप कोई भी संख्या बोलो उससे बड़ा संख्या जो है वो इन्फिनिटी। मान लो कोई बोला कि 10 करोड़ बोला, इन्फिनिटी क्या है, उससे एक बड़ा है। तो इसकी व्याख्या करते हुए तो एक जगह प्रसंग आता है भागवत में, काल ने भी नाम राक्षस था, वो भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, याद है, रण छोड़ के भाग रहे थे, वो तो काल ने भाग रहा था और उन्हें सोचा इस बार पकड़ लिया भगवान को, जैसे वो पकड़ लिया सोचते तो भगवान तुझे दूर दूर है। उन्हें सोचा अभी बस मैं और तेजी से भागूंगा, और बस में पकड़ लिया, जैसे सोचा पकड़ लिया, ये कि ऐसा लग रहा था कि बस मेरे सामने ही भगवान। तो ये साइंटिस्टों का प्रयास है, जैसे काल ने भी जो है वो भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, वो कितना भी प्रयास करे भगवान को पकड़ने के ऐसा लगता है कि पकड़ में आ गया लेकिन नहीं आता है। जैसे कोई मृग तृष्णा को पकड़ने जा रहा है, वो सोच रहे हैं पकड़ा लेकिन नहीं पकड़ में आता है। जैसा जितना दूर जाओगे उतना ही आपको दूर नजर आएगा। तो ये सूक्ष्म ही इज अ सटलेस्ट सूक्ष्मम। तो परब्रह्म का व्याख्या इस श्लोक में कैसा हुआ है, सूक्ष्मम हुआ है। ये सूक्ष्मम शब्द अति महत्वपूर्ण शब्द है, कृष्णा इज द सटलेस्ट। तो इस जगत में भी देखा गया है जो सूक्ष्म विज्ञान होता है उसको समझने के लिए उतना सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। जड़ विज्ञान जो है वो समझना जड़ बुद्धि वालों को हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान को समझना उसके लिए उतना सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, समथिंग वेरी सटल। अगर कोई ऐसा सूक्ष्म वर्णन है उसको समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, और जड़ चीजें हैं उसको ड्राइंग वाइंग डाल के समझ जाएगा व्यक्ति। लेकिन मान लो कोई सूक्ष्म विज्ञान है उसको समझना मुश्किल है, लेकिन भगवान की या तत्व विज्ञान जो है, भगवत तत्व विज्ञान जो है, परब्रह्म का विज्ञान जो है, वो सूक्ष्मात सूक्ष्म है। इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कम बुद्धि वाले भगवान को नहीं समझते, बुद्धिमान वाले भगवान को समझ जाते हैं, ऐसा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इधर बुद्धि का अर्थ क्या है? सूक्ष्म बुद्धि। जड़ बुद्धि जो है, जड़ बुद्धि वो माया वैभव, ये जो माया का वैभव क्या है, जड़ बुद्धि है। आजकल लोग हम बोलते हैं कि बड़ा बुद्धिमान है, ये IIT में फर्स्ट नंबर आता है उसको, इसने तो इतना कर दिया, उसने ये किया, ये जड़ बुद्धि के अंतर्गत उसका फर्स्ट नंबर है। लेकिन ये जो सूक्ष्म बुद्धि के अंतर्गत जो है उतना उनको उनका दिमाग उतना चलता नहीं है। जैसे अगर कोई कहे गधे को फर्स्ट प्राइज मिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन है तो गधा, बहुत सारे गधों के बीच में ये गधा को फर्स्ट प्राइज मिला, तो उसपे खुश होने की कोई बड़ी बात नहीं है। इसको फर्स्ट रैंक मिला, कोई बच्चा बहुत खुश होकर बोलता है मैं फर्स्ट रैंक मिला, वेरी गुड। लेकिन तकलीफ की बात यह है गधों के बीच में फर्स्ट रैंक मिला आपको, अगर सूक्ष्म बुद्धि वाले के बीच में फर्स्ट रैंक मिला हो तो बहुत अच्छा था, है कि नहीं? तो जिसके पास सूक्ष्म बुद्धि है वही परब्रह्म को समझ सकता है। इसलिए इधर क्या कहा गया है, परब्रह्म का वर्णन सूक्ष्मात शब्द के द्वारा कहा गया है, क्योंकि भगवान परब्रह्म सूक्ष्म होने के नाते सूक्ष्मम। तकलीफ क्या हुआ? शून्य कल्पितम। लोग क्या सोचने लगे? शून्य है भगवान। अगर मान लो कि आप कोई चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, अति प्रयास के बाद मिलता नहीं है तो क्या बोलोगे? ऐसा वस्तु है ही नहीं। जैसे मायावादी लोग इसी बात को कहते हैं कि भगवान को जानने के प्रयास करते अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञानी लोग अपनी भगवान को जानने के प्रयास करते हैं, अति प्रयास करने के बाद जब मिलते नहीं है, क्योंकि भगवान सूक्ष्म है, अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होते, लोग क्या बोलते हैं? नहीं है ही नहीं भगवान। अरे है भी तो उनके पास कोई विशेषता ही नहीं है, तो उनका प्रयास जो है लोमड़ी का प्रयास है, अंगूर प्राप्त करने का जो प्रयास है, आपको मालूम है स्टोरी, ये जो लोमड़ी था वो अंगूर को प्राप्त करने के लिए बहुत कूद रहा था, उनको दिख रहा था कुछ तो है अंगूर, लेकिन कूदने के बाद उन्हें अंत में क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने यही कहा। तो मायावादी लोग भी इसी बात को कहते हैं, भगवान क्योंकि इनके अंदर एक विशेषता है, सूक्ष्मत्वात भी एक विशेषता है, इसलिए एक आचार्य कहते हैं परब्रह्म विशेषम सूक्ष्मत्वात, ये परब्रह्म का विशेषता है सूक्ष्मत्व। लेकिन ये विशेषता को भूल के लोग सोचते हैं कि ये सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो अशून्यम शून्यम है, वो शून्य है। अगर कोई वस्तु होता, अगर कोई इसका रूप होता हमारे ग्रहण में होना चाहिए, अगर उनका गुण होता हमारे लिए ग्राह्य होना चाहिए, अपनी इंद्रियों का ग्राह्य ग्रहण किया हुआ रहना चाहिए। इसलिए भगवान हमारी बुद्धि अपनी इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आ रहे, इसलिए उनका कोई रूप नहीं है, कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म अर्थ है शून्य। सूक्ष्मत्वात में शून्यत्वात में बहुत अंतर है, इसके बारे में थोड़ा मैथमेटिक्स की ज्यादा बातें कर रहा हूं, क्योंकि शून्य आया है, बहुत सारे चीजें आया है। तो ये जो रामानुज करके एक बड़े मैथमेटिशियन थे, तो उनका एक बड़ा थियोरम है, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई किया था हमने उसका, तो उन्होंने साबित किया, लोग बोलते थे कि 1, 2, 3 ही नंबर है, ये नंबर्स होते हैं डिजिट्स 1, 2, 3। तो रामानुज
रामानुजाचार्य नहीं है, रामानुज करके बड़ा मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने सारे लोगों को ये स्थापित किया शून्य भी संख्या है, शून्य भी एक संख्या है। अगर कोई व्यक्ति शून्य को नकार दिया जाए, अगर संख्या नहीं होता उसके बिना आप गणित में कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए शून्य का भी कुछ वैल्यू है। अंततः उन्होंने कहा ये शून्य की वजह से बाकी सबका कुछ वैल्यू है, नहीं तो कुछ बाकी लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। तो मायावादी लोग सबसे बड़ा यही गड़बड़ कर देते हैं, भगवान सूक्ष्म है तो सूक्ष्म को शून्य बना देते हैं। नहीं, सूक्ष्म भी एक विशेषता है भगवान का। अगर भगवान शून्य भी है, वो शून्य भी भगवान की विशेषता है, क्योंकि वो भी कोई निर्विशेष नहीं है। इसलिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी ने, बुद्ध लोग क्या कहते हैं कि भगवान परब्रह्म, भगवान कौन है? नथिंग, नथिंगनेस इज गॉड। अगर नथिंगनेस इज गॉड, नथिंगनेस इज ऑल्सो समथिंग। श्रीमद् मध्वाचार्य साबित करते हैं, जब कोई बौद्ध व्यक्ति वो ध्यान कर रहा है और उनसे पूछो कि किससे ध्यान कर रहे, किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो, मैं शून्य के ऊपर ध्यान कर रहा हूं, तो कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट है ना शून्य करके, तब नहीं 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 मैं मन में ये ध्यान कर रहा हूं कि मन को कैसे शून्य बनाया जाए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन में कम से कम मैं शून्य बनना चाहता हूं, शून्य के ऊपर ध्यान करना चाहता हूं, वो तो ध्यान है। अगर वो भी नहीं है तो ध्यान का क्या मतलब है? इस प्रकार श्रीपाद मध्वाचार्य अपनी अनुभाष्य में ये बुद्ध लोगों का खंडन किया, ने कहा कि उनका ध्यान जो है वो ढोंग है, उनका ध्यान का केंद्र जो है वो भी ढोंग है, और उनके पीछे कोई तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए भगवान शून्य भी है, वो शून्यत्वात या सूक्ष्मत्वात उनकी विशेषता है। इसलिए कहा गया है, एक आचार्य कहते हैं कि ये जो सूक्ष्मम, ये क्या है? भगवान की विशेषता है। अनंत गुण संपन्ना नारायण, अनेकों गुण संपन्न, अनेकों गुणों में एक गुण है सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्मत्वात को गुण के रूप में नहीं मानते हुए लोग क्या सोचते हैं? शून्य मानितम या शून्य कल्पितम। क्या सोचते हैं? शून्य के रूप में कल्पना करते हैं, भगवान कोई और नहीं, वो शून्य है, उनके पास कोई विशेषता नहीं है, ही डजंट हैव एनी एट्रीब्यूट्स। तब अशून्यम अपि शून्य कल्पितम, ये जो दूसरा इनका पहला शब्द है उधर निरूपण किया गया है, उनकी सूक्ष्मत्वात, भगवान की सूक्ष्मत्वात, ये गुण के वजह से, बिकॉज ही सो सटल, लेस इंटेलिजेंट पीपल जिनका जड़ बुद्धि है वो किस क्या निराकरण क्या क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो ये निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये भगवान जो है कौन है? शून्यम। लेकिन वो शून्य नहीं है, वो कौन है? अशून्यम। अशून्यम का अर्थ क्या है? उनके पास अनेक अनेक गुण हैं, ऐसा नहीं कि शून्य गुण है। शून्य का अर्थ है जीरो, इट इज नॉट दैट इट डजंट हैव एनी क्वालिटीज। अशून्यम का अर्थ क्या है? अनंत गुण संपन्ना नारायण, अनेकों गुणों से संपन्न है। अशून्य का अर्थ यह नहीं कि उनके पास एक दो गुण है, शून्य का व्यतिरेक क्या है? अनंत है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, उनके पास दो तीन गुण है? नहीं, भगवान के पास दो तीन गुण है इसलिए वो अशून्य है, नहीं। अशून्य का अर्थ यह है कि आप इनके गुणों को गिन नहीं सकते हो, यू कैनॉट काउंट द क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। इसलिए अशून्य का अर्थ क्या है? अनंत गुण संपन्ना, इनफाइनाइट क्वालिटीज। तो ये भगवान के पास अनंत गुण होने पर भी लोग उनको शून्य कल्पितम क्यों कल्पना करते कि शून्य है? क्योंकि भगवान सूक्ष्म है, उनके पास किस प्रकार के गुण हैं? सूक्ष्म गुण हैं। वो सूक्ष्म का अर्थ क्या है? दिव्य गुण है। इससे श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं इधर कि सूक्ष्मम अशून्यम का अर्थ क्या है? उनके पास दैवी गुण है, अनंत दिव्य गुण है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से लोग क्या सोचते हैं, भगवान को शून्य समझते हैं। तो इधर इसका निरूपण होने के बाद अभी वर्णन हुआ है, फिर है कौन है भगवान, अभी आप निरूपण करो। भगवान वासुदेवेति, भगवान इस प्रकार कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया है कि नहीं, बड़ा गहरा तत्व है। कभी कुछ लोग बोलते भगवान नहीं है, कुछ तो बोलते शून्य है, उनका कोई आकार नहीं है। कभी कभी शास्त्रों में वेदों में इस प्रकार का वर्णन है। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि भगवान जो है वासुदेव इति, क्योंकि भगवान जो है वासुदेव है। लोग जो हैं मायावादी लोग हैं, अन्य लोग जिनका बुद्धि जड़ है, वो भगवान को वासुदेव के रूप में नहीं जानते। वासुदेव के रूप में नहीं जानने की वजह से इस प्रकार का कंफ्यूजन है। जो व्यक्ति ये जानता है भगवान वासुदेव है, उनके मन में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार का उनके मन में विकार नहीं है, या कंफ्यूजन क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन मोह या विचलित नहीं हुआ है। वो तत्व ज्ञान को पूर्ण तरीके से जानता है। कौन? जो ये जानता है भगवान वासुदेव है। वासुदेव सर्वहा इति बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान, बहुत जन्मों की कंफ्यूजन के बाद, बहुत जन्म जन्मांतर तक वो भटकते भटकते भगवान कौन है ढूंढते ढूंढने की प्रयास करते करते अंततः जब ज्ञानवान बनता है, एक भक्त का संगति में आता है, तब वो समझ बैठता है वासुदेव सर्वहा इति। समहात्मा सुदुर्लभा, क्या कहा गया है, ऐसा महात्मा जो है बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति ये निष्कर्ष पे पहुंचा है, क्या निष्कर्ष पे पहुंचा है, वासुदेव सर्वहा इति। जो ये शब्द को नहीं जानता है वासुदेव सर्वहा इति, ये लाइन को नहीं जानता है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो तत्व ज्ञान का विचार नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, केवल समाज में हर जगह उत्पात मचा सकता है। उनकी व्याख्या, उनकी प्रवचन, उनकी विचार, उनकी जो भी सोच विचार है, सब कुछ व्यर्थ है। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी शिता। उनके जो विचार है, उनके जो क्रिया है, उनका जो ज्ञान है, सब बेकार है। जिनको ये साक्षात्कार नहीं हुआ है, क्या साक्षात्कार नहीं हुआ है, वासुदेव सर्वहा इति, ये साक्षात्कार जिसका नहीं हुआ है, उनका सारे कार्य बेकार है, उनका सारा ज्ञान बेकार है, उनकी सारे आशा बेकार है। क्योंकि हर व्यक्ति जो आशा करता है, इच्छा करता है, इच्छा के अनुसार वो ज्ञान प्राप्त करता है, वो ज्ञान के अनुसार कार्य करता है कि नहीं, क्योंकि इच्छा के बिना कोई क्रिया नहीं होता है, और कोई ज्ञान के बिना कोई क्रिया नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई क्रिया करना है, इच्छा की आवश्यकता है और ज्ञान की आवश्यकता है। तो जो लोग वासुदेव सर्वाहेति, भगवान ही एकमात्र वासुदेव है, वासुदेव ही भगवान है, इसको नहीं जानते, उन लोगों की सारे प्रयास विफल है, उनकी सारे आशा विषय विफल है, उनका सब ज्ञान सब विफल है। यानी पूरा जगत जो चल रहा है, ये सब केवल विफल की ओर जा रहा है। उनका जस कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उनको हाथ में अंत में कुछ भी नहीं मिलता। इतना प्रयास के बाद भी, इतना हासिल करने के बाद भी वो बेकार हो जाता है। उनका लगता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इतना सब कुछ ज्ञान लिखने के बाद भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आत्महत्या करते हैं लोग। इतना धन कमाने के बाद भी आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोघाशा मोह कर्माणो मोघ ज्ञान राक्षसी मसुरी मिचेया। जब उनका जो ज्ञान है, उनके द्वारा लिखा गया जो भी सिद्धांत है, वो क्या है, राक्षसी सिद्धांत है, आसुरी सिद्धांत है। इसके ऊपर और गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन बात यह है वासुदेव सर्वहा इति। जो ये शब्द को नहीं जानता है वासुदेव सर्वहा इति, वो निश्चित रूप से कंफ्यूजन में है। इसलिए क्या कहा गया है, भगवान वासुदेवेति। अभी जानने के लिए प्रयास करेंगे वासुदेवेति का अर्थ क्या है। वासुदेव सर्वहा इति, वासुदेव सर्वहा इति का तीन अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, वासुदेव मेरे भगवान श्री कृष्ण, जिसका नाम वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र है, वो कहां है, सर्वत्र है। सर्वहा इति हर जगह है। किस रूप में हर जगह, ब्रह्म के रूप में है। वासुदेवा मेरा प्रिय भगवान श्री कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है, वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए मथुरा में, मथुरा के जेल में, वही वासुदेव सर्व हृदयेषु तिष्ठति। इसको क्या कहा गया है? परमात्मा कहा गया है। वासुदेवः सर्वहेति, मेरे जो प्रिय भगवान श्री कृष्ण जो अनेकों अनेकों लीलाएं किए ब्रज में, वही वसुदेव, वही वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वो कौन है? मेरे लिए सर्वस्व है। वासुदेवः सर्वहेति का तीसरा अर्थ क्या है? मेरे लिए वो सर्वस्व है। वो कौन है? भगवत तत्व को निरूपण किया गया है। इसलिए प्रभुपाद ये सार रूप में इस तात्पर्य में क्या कहते हैं? वदन्ति तत्त्वतत्त्व में ज्ञानद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। भक्त जो है ब्रह्म शब्द के सुनते ही वो घृणा नहीं करता है। ब्रह्म सुनते समझ में आता है क्या है, कौन क्या है ब्रह्म? ओ मेरे वासुदेव का शरीर का प्रकाश है। इसलिए क्या कहा गया है? यद ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। चैतन्य चरितामृत का जो ये स्थापना करते हुए 14 श्लोकों में जो तीसरा श्लोक है, हाँ तीसरा श्लोक है, इसके अंदर कहा गया है यद ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। जिनको उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है वो कौन है? वो कुछ और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का या चैतन्य महापुरु का शरीर का अंग का कांति है। तो जैसे कोई ब्रह्म शब्द सुनाई पड़ता है शास्त्र में, वो ब्रह्म शब्द सुन के भक्त क्या सोचता है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान षडैश्वर्य पूर्ण अनुर्ग समान, ये ब्रह्म शब्द कुछ और नहीं है, वो वासुदेव इति, मेरे ही वासुदेव का अंश वैभव है, उनकी शक्ति है। जब परमात्मा शब्द सुनते हैं भक्त, वो परमात्मा शब्द सुन के भक्त लोग घृणा नहीं करते परमात्मा, ए ये तो लोअर रियलाइजेशन है, परमात्मा रियलाइजेशन इज लोअर रियलाइजेशन, ये सही बात है, इनकम्प्लीट रियलाइजेशन। लेकिन जो भक्त होता है वो जानता है परमात्मा कोई और नहीं है, उन कृष्ण ही है। सर्व हृदयेषु तिष्ठति, मेरे ही वासुदेव सबके हृदय में बैठे हैं, वो कौन है? परमात्मा। इसलिए ब्रह्म ही वासुदेव है, परमात्मा ही वासुदेव है और भगवान ही वासुदेव है। जो ये तत्व को जानता है, क्या है वो? कि वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम्, ये तत्व को जानता है। किस रूप में जानता है? अद्वयम्, ज्ञानम अद्वयम्, अद्वैय ज्ञान को जानता है। क्या जानता है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो जानता है। उसके मन में कोई भी शास्त्र का कोई भी पंक्ति पढ़ो, उनके मन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं आता है। हर शास्त्र का प्रत्येक शब्द अगर आपको स्पष्ट रूप में समझना है, ये तभी संभव है जब आप इस बात को जानते हैं, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वः इति। ज्ञानवान बनता है, ज्ञानवान का अर्थ क्या है? वासुदेवः सर्वः इति जानता है, और वो क्या करता है? कृष्ण का शरण ग्रहण करता है। तो इसलिए ये श्लोक अति महत्वपूर्ण श्लोक है, जो आखिरी श्लोक। ऐसा कहा गया है कोई भी शास्त्र होता है, कोई भी अध्याय होता है, कोई भी ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ का आखिरी अध्याय जो है वो सारा ग्रंथ का सार है। प्रत्येक अध्याय का जो आखिरी श्लोक होता है वो अध्याय का सार माना जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई प्रवचन दिया, प्रवचन में अंत में जो कहते हो वो उस प्रवचन का सार माना जाता है। अभी इस अध्याय का सार ये है, सार क्या है? सार यही है कि वासुदेवः सर्वः इति, यही सार है। भगवत तत्व का निरूपण यानी भगवत तत्व को जानना, परम सत्य को जानना, परम सत्य की जो सिद्धांत को जानना, ये पूरा इस श्लोक का सार, इस अध्याय का सार है। क्या कहा गया है? भगवान वासुदेवेति, तो जान लिया भगवान कौन है, सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। तो क्या होता है? यम गृणन्ति ही सात्वतः, यम गृणन्ति ही सात्वतः। कुछ लोग सात्वत नहीं हैं, वो लोग क्या मान के बैठे हैं? शून्य कल्पितम। लेकिन जो सात्वत है, जो भक्त है, वो क्या करते हैं? वो गृणन्ति, वो गान करते हैं। किनको गान करते हैं? अनंत गुण संपन्ना अशून्यम सूक्ष्मम वैसे वासुदेव हैं, उनकी लीलाओं को गान करते हैं। क्यों गान करते हैं? उनको मालूम पड़ गया है कि वासुदेव सर्वाहैति। तो वासुदेव सर्वाहैति ये जानने के बाद यम गृणंति ही सात्वतः, जो सात्वतः जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं, जो बुद्धिमान हैं, उनको भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। He manifests himself, एक आचार्य लिखते हैं सात्वतः भक्तों के सामने भगवान अपने स्वरूप को व्यक्त कर देते हैं और बोलते हैं देखो मुझे। सूक्ष्म है लेकिन वही सूक्ष्म वासुदेव भक्तों के लिए क्या होता है, वो सूक्ष्म नहीं है। भक्तों के लिए क्या है, उनको स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ते हैं? उनकी आंखों के सामने जैसे कोई इस जगत के विषय दिखाई पड़ रहे, वस्तु दिखाई पड़ रहे, वैसे ही जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं और उनको देखते देखते वर्णन करते हैं। ऐसा नहीं कि जब शुद्ध भक्त भगवान की लीलाओं को वर्णन करते हैं कहीं पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा वर्णन करते हैं, नहीं, उनकी भगवान अपना स्वरूप को दिखाते हैं। उपनिषद में इस बात को कहा गया है नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, याद रख लीजिएगा। नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, भगवान बड़े बड़े प्रवचनों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। न मेधशा, अपनी बुद्धि या तर्क के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। न मेधशा न बहुना श्रुतेन, मैंने सारे श्लोकों को याद कर लिया है, सारे वेद आता है मुझे, वेदों को रट लिया मैंने, तो भी भगवान प्राप्त नहीं होते। यम ए वैश्य वृणुते, जिस व्यक्ति को भगवान ने चुन लिया, यम ए वैश्य वृणुते का अर्थ, वृणुते का अर्थ चुनना, स्वीकार करना, जिस व्यक्ति को भगवान चुनते हैं तो तस्यैस्य आत्मविवृणुते तरुम स्वाम, ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या करते हैं, आत्मविवृणुते दिल खोल के दिखा देते, देखो मैं कौन हूं, हु एम आई। सो एक आचार्य वर्णन करते हैं यम गृणंति ही सात्वतः, वो सात्वत भक्तों के सामने भगवान क्या करते हैं, अपने आप को पूर्ण तरीके से बोलते हैं। सूक्ष्म होने पर भी भक्तों के सामने भगवान सूक्ष्म नहीं है। जैसे यशोदा, यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन योगीगण पकड़ने के लिए प्रयास कर लेकिन पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि भगवान सूक्ष्म है। लेकिन भगवान भक्तों के सामने अपने सूक्ष्मत्वात जो गुण है वो अपने आप लुप्त हो जाता है, इसलिए उनका गान कर पाते हैं। अगर कोई सूक्ष्म वस्तु है जो हमको हमारे इंद्रियों के हमको ग्रहण नहीं होता है तो उनका क्या गान कर पाएंगे, हाउ कैन वी ग्लोरीफाई। लेकिन सात्वतः गृणंति, क्यों गृणंति, यम सात्वतः गृणंति, उसी यम शब्द इस्तेमाल किया है, यम ये जो शब्द के द्वारा सूचित किया है, जिस वस्तु जो सूक्ष्म है, जिस वस्तु को सूक्ष्म होने के नाते लोग शून्य मान के बैठते हैं, वही वस्तु भगवान के भक्तों के सामने, वही भगवान, वही वस्तु, वास्तविक वस्तु भक्तों के सामने प्रकट होते हैं और उनको देखते देखते भगवान क्या कर, भक्त क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, दे ग्लोरीफाई कृष्णा। इसलिए आप मायावादियों के प्रवचन में बैठो, उनके पास क्या रहता बोलने के लिए समझ में नहीं आता मुझे, इतना बोल दिया भगवान या पर ब्रह्म निराकार है, उसके बाद क्या बोलेंगे, इसलिए प्रवचन होता ही नहीं होगा लगता है, इसलिए ध्यान करते हैं इसलिए ध्यान करते हैं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ तो हम मालूम हो तभी बोलेंगे ना। ये एक शब्द में हो गया, ठीक है भगवान निराकार है, उसके बाद क्या, निराकार है तो किसको क्या बोलोगे, उसके बाद बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए मौनी बाबा बनते हैं क्योंकि सब्जेक्ट होगा तभी बोलेंगे लेकिन यदि सम सब्जेक्ट तभी बोल पाए, इसलिए मौनी बनते हैं, इसलिए ध्यान लगाते हैं। तो हमेशा मेरे मन में एक प्रश्न था कि मायावादी लोग क्यों मौन व्रत क्यों धारण करते या ध्यान में क्यों जाते हैं। तब बाद में बहुत ऐसे एक दिन ऐसे साक्षात करो, अरे बोलेंगे तो बोलेंगे क्या उनके सिद्धांत में, व्हाट विल दे डू। इसलिए कुछ ऐसे लोग उनके ऊपर मायावादी ग्रंथ के ऊपर लिखते लिखते कुछ तो बहुत बड़ा लिखते शुरू करते, अगर बोलना शुरू किया तो उसको बोलते बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश क्या है, वही बात को इधर उधर घुमा फिरा के बोलते बोलते जाएंगे और उसका कोई अर्थ नहीं होता, अंत में क्या है बोलेंगे फुटबॉल खेलो। हाँ, एक मायावादी दार्शनिक अपने आप को बड़ा बार दार्शनिक समझता था, वो ब्रह्म का व्याख्या करना शुरू किया, आप जाओ भारत के गली गली में जाओ, हाँ सोहम सोहम सुनाई पड़ेगा, मैं बोला कि मैं कौन से गली में, सोहम तो सुना ही नहीं पड़ा आज तक मुझे, से नाम नहीं लूंगा। और पूरा उधर उधर की बातें कहा, अंत में क्या बोला, वेक अप नाउ, इंडिया शुड वेक अप एंड प्ले फुटबॉल। मैंने बोला अभी तो खेल के आ रहा हूं, कॉलेज में वो किताब पढ़ा था। हाँ, क्योंकि वो उसका विवेक जो है वो अंधा हो चुका है। क्यों? विवेक जिसका अंधा है, अंधा विवेक है, वो सूक्ष्म विज्ञान को नहीं समझ सकते, तभी तो इस प्रकार की ग्रंथ रचना करते हैं, इस प्रकार की शून्यम सूक्ष्मम अशून्यम अपि शून्यम। भगवान अनंत गुण होने पर भी उनको क्या सोचते हैं, उनका कोई गुण नहीं है। तो ये भगवत तत्व को निरूपण करने वाला श्लोक है। ये पूरा अध्याय का सार ये है, वासुदेवः सर्वः इति यम गृणन्ति सात्वतः। वासुदेवः सर्वः इति, वासुदेव ही सर्वस है, ये यम उसी भगवान को इस प्रकार जानते हुए उनका नित्य गान करते हैं। यानी दूसरे शब्दों में अंत में कहा गया है कि कटवांग राजा भगवान की सेवा में रथ होके भगवत धाम में, भगवान अनंत गुणों वाले भगवान हैं, वैकुंठ जिनको कहा जाता है, उनको उन्होंने क्या किया, उनका गुणगान करना शुरू किया, या गुणगान कर रहा है, कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? शून्यवादी जो इसको कहा गया शून्य कल्पितम, एक्चुअली एक प्रकार देखा जाए मायावादी और शून्यवादी, शून्यवादी करते बुद्धिस्ट, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। अंततः वो शून्यवादी है, मायावादी भी शून्यवादी है, लेकिन वो मायावादी वो शून्य के ऊपर ब्रह्म का ढांचा डाल दिया, इसलिए क्या कहा गया है, मायावादम असत शास्त्रम बौद्धम प्रचन्न मुच्छते। एक्चुअली मायावादी भी कौन है, बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, लेकिन प्रचन्न मुच्छते ढके हुए है। क्या ढके हुए है? वेद बोलते हैं, उपनिषद, वेदों को स्वीकार करते हैं। वेदों की ढांचा में जो छुपे हुए बौद्ध है मायावादी, वेदों की ढांचा में। इसलिए सारमुंडाचार्य के और चैतन्य महाप्रभु संवाद में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप मायावादी बौद्ध लोगों से गए गुजरे हो, यू आर वर्स देन बुद्धिस्ट। और मायावादी लोग सोचते हैं कि हमने बुद्ध बौद्ध लोगों को प्रास्त किया है, बौद्ध से हम श्रेष्ठ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यू मायावादीज आर वर्स देन बुद्धिस्ट। क्योंकि कम से कम बौद्ध लोग जो है बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं वेदों को स्वीकार नहीं करते और बोलते भगवान नहीं है, लेकिन आप वही सिद्धांत को वेदों के बैनर में बोल रहे हो। यानी पुलिस के ड्रेस में चोर, चोर अच्छा है, और पुलिस के ड्रेस में चोर चोर है तो ज़्यादा डेंजरस है कि नहीं? तो ये मायावादी जो है वो कौन है, पुलिस के ड्रेस में चोर है। यानी वेदों का कपड़ा पहन के, वेदों की ढांचा में, वो वेदों का ध्वजा उठाते हुए नास्तिकता का उपासना, नास्तिकता का प्रचार कर रहे हैं। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी मायावादियों से थोड़ा सा अलग है। जैसे चार कुमार ब्रह्मवादी थे, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, उनको ब्रह्मवादी कहते तत्ववित, ये जो है ना तत्वदर्शिना, ये जो शब्द आता है वदंती तत्वविदस, ये तत्वविदस कौन है, ब्रह्मवादी। वो जानते हैं भगवान को, जानते हैं परमात्मा को, जानते हैं और ब्रह्म को भी जानते हैं, ये भी जानते हैं वासुदेव ही सर्वः इति जानते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है ब्रह्मवादियों में, उनका आकर्षण जो है ब्रह्म के प्रति है, क्योंकि अभी शुद्ध भक्त का संगति नहीं हुआ। जैसे शुद्ध भक्त का संगति होता है तब भगवान के प्रति आकर्षण होता है। जैसे भक्त भागवत का संगति हुआ था चार कुमार को, भक्त भागवत कौन है, तुलसी, तुलसी के पत्ते से या तुलसी दल से जो सुगंध उत्पन्न हुआ, उनकी संगति से चार कुमार का आकर्षण कृष्ण से हो गया। मालूम था एक भगवान है लेकिन आकर्षण नहीं था। और साथ साथ में इधर सुखदेव गोस्वामी, तो उनका आकर्षण किसके द्वारा हुआ ग्रंथ भागवत के द्वारा हुआ। तो ग्रंथ भागवत के संगति की वजह से सुखदेव गोस्वामी का आकर्षण हो गया कृष्ण के प्रति, भगवत तत्व के प्रति। इसलिए ब्रह्मवादी में और मायावादी में अंतर है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री प्रभुपाद की जय।